हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रवि से फोन पर बात करने के बाद आदित्य थोड़ा परेशान लग रहा था। वो अपना सिर पकड़कर हॉल के सोफे पर बैठा हुआ था। तभी घर का दरवाजा खुलने की आहट हुई। कुछ देर बाद उसे सुनैना आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर आदित्य कुछ देर के लिए अपनी परेशानी भूल गया। वो फिक्रमंद होकर उठा, उसकी ओर बढ़ा और उसे गले लगाते हुए बोला, कहाँ चली जाती हो तुम इस तरह से? सिर्फ एक नोट लिखकर चली गई और मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही हो। इतनी देर कर दी आने में, 2 घंटे का बोलकर गई थी, पता है 4 घंटे से भी ज्यादा हो गए। और मैं? आदित्य उसे गले लगाए हुए इतना सब कुछ बोल गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सिर्फ उसने ही सुनैना को गले लगाया हुआ है। हर बार की तरह सुनैना ने उसकी पीठ पर हाथ नहीं रखा था और न ही वो आगे आकर उसके गले लगी थी। इसके अलावा उसने आदित्य को खुद से दूर भी नहीं किया था। वो एकदम बेजान पुतले की तरह वहां खड़ी थी। आदित्य से लगातार शिकायत करते हुए सुनैना ने इतना कुछ बोला, लेकिन उसने अब तक उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया था। सुनैना इस तरह का बर्ताव जल्दी नहीं करती थी, इसलिए उसके कोई भी रिएक्शन न देने पर आदित्य को उसकी फिक्र हुई। वो उससे थोड़ा दूर होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ सोना, कुछ बोलोगी? कहाँ गई थी तुम और इस तरह से चुप क्यों हो? आदित्य, मैं जो भी अभी तुमसे पूछूंगी, तुम बस मुझे उस बात का एकदम सच सच जवाब देना, सुनैना ने एकदम सीरियस और गहरी आवाज में कहा। साथ ही उसने आदित्य को उसके पूरे नाम से बुलाया, जबकि सामान्यतः वो उसे आदि बुलाती थी। आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ उसकी आंखों में देखकर उसे समझने की कोशिश करता हुआ बोला, हाँ, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलता सोना, लेकिन तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या पूछने वाली हो? और एक मिनट, ये बताओ कि तुम थी कहाँ? तुम्हारे सवाल नहीं आदित्य, आज सवाल मैं करूँगी और तुम सिर्फ उनके जवाब दोगे, वो भी एकदम सच, सुनैना ने फिर से उसी तरह एकदम गहरी और ठंडी आवाज में कहा। इस बार आदित्य भी एकदम सीरियस होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए पूछो क्या पूछना है। तुम्हारी माँ, सुनैना ने एकदम से कहा। आदित्य हैरानी से आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखने लगा। सुनैना ने आज तक कभी भी उससे उसकी माँ के बारे में कोई बात नहीं की थी। आज इस तरह से उसने ये बात बोली तो आदित्य समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। मेरी माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? आदित्य ने पूरी बात जानने की कोशिश में पूछा और साथ ही सुनैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। सुनैना ने उसका हाथ झटक दिया और एक कदम पीछे होते हुए बोली, तुम्हारी माँ जिंदा है आदित्य, और फिर भी आज तक तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया। अगले महीने हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा आदित्य, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मैं उसी अंधेरे में हूँ जिसमें मैं शादी के पहले दिन थी। सुनैना, प्लीज ये सब मत बोलो, मुझे ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है, और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि इतने दिनों में हमारे रिश्ते में कितने सारे सकारात्मक बदलाव आए हैं और हम दोनों ने पूरी तरह एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, सिर्फ ये एक बात छोड़कर, और इसके लिए तुम मुझे इस तरह से आंक रही हो? आदित्य थोड़ा सा निराश होते हुए बोला। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो ये जानकर थोड़ा हैरान भी था कि सुनैना को इस बारे में पता चल गया था। वो खुद भी सुनैना को उस दिन इस बारे में बताने वाला था जिस दिन सुनैना ने उससे ये सवाल किया था कि क्या कोई ऐसी बात है जो उसने अब तक उसे नहीं बताई हो। फिर आदित्य उसे ये बात बताने वाला था, लेकिन तभी अक्षत वहां आ गया था। फिर उसके साथ बातों में लगकर वो दोनों ये बात भूल गए थे। लेकिन आदित्य को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बात सुनैना के सामने इस तरह आएगी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनैना को आखिर ये बात कैसे पता चली। आदित्य, मैं तुम्हें आंख नहीं रही हूँ, लेकिन सच में मुझे ये बात किसी बाहरी इंसान से पता चली तो मुझे हमारे रिश्ते को लेकर सच में एक बार फिर से सोचने की जरूरत महसूस हो रही है। आखिर क्यों, क्यों तुमने मुझे ये बात नहीं बताई? सुनैना अब भावुक होते हुए बोली और उसकी आंखों में आंसू भी थे। सुनैना, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम अभी किससे मिलकर आ रही हो और किसने तुम्हें इस बारे में बताया, लेकिन अगर तुम इस बात को लेकर हमारे रिश्ते को दांव पर लगाओगी तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो औरत मेरी लाइफ में कोई महत्व नहीं रखती है, और मैं नहीं मानता कि तुम्हें अब तक क्या लगता था, क्योंकि तुमने भी कभी मेरी माँ के बारे में जानने के लिए मुझसे कुछ नहीं पूछा। आदित्य अपनी तरफ से पूरी बात स्पष्ट करते हुए बोला। उसकी ये बात सुनकर सुनैना हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आदित्य उससे ऐसा कोई सवाल करेगा। फिर उसकी बात का जवाब देते हुए सुनैना बोली, हाँ, मैंने इस बारे में नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ शायद इस दुनिया में नहीं है और तुम इस बारे में बात नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने तुम्हारी हालत देखी है आदित्य। तुम कैसे छोटी छोटी बातों से कितना ज्यादा प्रभावित होते हो और भावुक भी, और फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। मुझसे तुम्हारी वो हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। बस इसीलिए मैंने सच्चाई ये बात तुम्हें दुख तकलीफ देगी। और तुम्हें क्या लगता है, अभी क्या कर रही हो तुम? अभी जो तुम इस बात को इस तरह से मेरे सामने कर रही हो, तो क्या ये मुझे दुख और तकलीफ नहीं दे रही है? यकीन मानो सुनैना, वो औरत अगर मर जाती तो मुझे इतना दुख ना होता। लेकिन वो जिंदा है और बदकिस्मती से मुझे पैदा करने वाली मेरी माँ भी लगती है, तो इस बात से मुझे और ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैं इस सच को बदल नहीं सकता। आदित्य एकदम दर्द भरी आवाज में बोला और काफी भावुक हो गया, लेकिन अपना चेहरा ऊपर करते हुए उसने पूरी तरह से अपने आंसू रोकने की कोशिश की और फिर अफसोस भरी नजरों से सुनैना की ओर देखते हुए सीढ़ियों की ओर पड़ गया। उसका इस तरह का रिएक्शन देखकर सुनैना को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन इतना समझ गई कि जाने अनजाने उसने फिर से शायद आदित्य को दुख पहुंचाया है। सुनैना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो बस इस बारे में उससे स्पष्टता चाहती थी, क्योंकि विराज ने उसे बताया था कि आदित्य की माँ जिंदा है और वो उनसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब वो विराज की सौतेली माँ है। सुनैना को ये कारण कुछ ठीक नहीं लगा। अगर आदित्य की माँ उसके पिता से प्यार नहीं करती थी और किसी और के साथ उन्होंने अपनी लाइफ दोबारा शुरू की, तो आदित्य को इसके लिए उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं थी। यही बात स्पष्ट करने के लिए सुनैना ने आते ही आदित्य से ये सवाल किया था, लेकिन इस वक्त वो पहले ही दिल टूटने की वजह से बहुत परेशान था। सुनैना के घर पर न होने की वजह से उसके बाद आते ही सुनैना ने इस बारे में सवाल किया और इसके साथ ही उसके प्यार और उन दोनों के रिश्ते पर भी सवाल खड़े किए थे, तो आदित्य से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया। सुनैना ने उसे सीढ़ियाँ चढ़कर उतरते हुए देखा और वो समझ गई कि वो जरूर स्टडी रूम में ड्रिंक करने के लिए गया होगा। अभी पिछले एक हफ्ते में ही आदित्य की हालत में काफी सुधार हुआ था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से उसने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया था और सारी दवाइयाँ भी समय पर ले रहा था, क्योंकि तब से सुनैना उसका पूरा ध्यान रख रही थी और इन दोनों के बीच कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आदित्य खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और वो जरूर ड्रिंक कर लेगा, लेकिन सुनैना ये नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए वो सीढ़ियों की ओर भागी।
गीता किचन के पास से खड़ी होकर वो सारा ड्रामा देख और सुन रही थी, लेकिन वो इन सब में कुछ भी बोल या कर नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वापस अपने कमरे की ओर चली गई। दूसरी तरफ राठौर होटल इंडस्ट्रीज के एक बड़े से 5-स्टार होटल का लग्जरियस रूम। साइड में एक कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ था और उसके आगे एक डैशबोर्ड भी था जो साउंड सिस्टम कंट्रोल करने के काम आता था। वहां पर सिस्टम के सामने विराज अपने कानों में हेडफोन लगाकर बैठा हुआ था। उसे स्क्रीन पर कुछ अटपटी लाइनों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हेडफोन में उसे काफी कुछ सुनाई दे रहा था। वो सब सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन विराज ने अपने कान पर हेडफोन लगाए हुए थे, इसलिए उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो पहले की ही तरह अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक लड़की जिसने बहुत ही फॉर्मल पैंट और कोट सूट पहना हुआ था। इसके अलावा उसके बाल खुले हुए थे, हाथों में घड़ी और पैरों में मीडियम लेंथ की ब्लैक हील पहने हुए थे। वो लड़की काफी जवान, एलिगेंट और प्रोफेशनल लग रही थी, लेकिन अभी उसकी सिर्फ एक ही नजर आ रही थी और वो तेज कदमों से चलते हुए उस होटल रूम के अंदर आई। ये विराज यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने इससे मना किया था कि होटल में इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है, इससे मेरे होटल की प्रतिष्ठा पर फर्क पड़ेगा, लेकिन वो लड़का मेरी बात नहीं सुनता और पता नहीं क्या उल्टे सीधे काम करता रहता है। विराज की तरफ देखकर बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए उस लड़की ने धीमी आवाज में कहा। वैसे वो तेज आवाज में भी कहती तो भी विराज को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके कान हेडफोन से ढके हुए थे। वो लड़की भी ये बात समझ गई, इसलिए गुस्से में आगे बढ़ते हुए विराज के पास पहुंची और खींचकर उसके कान से हेडफोन हटाते हुए गुस्से में बोली, ये सब क्या पागलपन है विराज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, बंद करो ये सब।
पहले तो हमारी कुछ और ही बात हुई थी मनस्वी दी, लेकिन ऐसा लगता है अब आपने खुद ही प्लान में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं।
लेकिन मुझे नए बदलाव कुछ खास पसंद नहीं है,
विराज उस लड़की की बात का जवाब देता हुआ बोला,
और वो और कोई नहीं, उस होटल और पूरी राठौर इंडस्ट्रीज की मालकिन मनस्वी राठौर थी। क्रमशः